मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। 13 मई 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान प्रिय साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं पीके सिंह, आप गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं, सतीश चंद्रा, आप उत्तर काशी उत्तराखंड से हैं, और दीपक दुबे, आप होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हैं। तो पीके सिंह, सतीश चंद्रा और दीपक, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अब हम सीधे बात करते हैं अपने मोटिवेशन वाले सेक्शन पर। कल मैं आप लोगों से, अभी पिछले दो समय का कह लीजिए कि लगभग दो ऑडियो गाइडेंस से मैं किसी न किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में फेथ और फियर पर बात कर रहा हूं। फेथ पर सीधे मैं बात नहीं कर रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि दोस्तों मैं ये मान के चलता हूं कि जब फियर खत्म होता है तो फेथ अपने आप आ जाता है। ऐसा कैसे होगा हम आगे चल करके देखेंगे। कल आपको ध्यान होगा कि फियर की बात करते समय मैंने एक स्थापना दी थी। स्थापना मतलब एक बेसिक थ्योरी, जो अपनी थ्योरी मैंने बताई थी, दूसरों की भी है लेकिन इस पर मैं विश्वास करता हूं, वो ये कि वस्तुतः सही मायने में जो भय होता है वो हमारे अंदर होता है, बाहर कहीं नहीं होता। और हमारे अंदर का भय ही बाहर मूर्त रूप में सामने आता है और सच में फिर वो घटना घट भी जाती है। मित्रों, इस पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं और एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं और सड़क पर चलाते जा रहे हैं, सामने आपको एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है कि पत्थर पड़ा हुआ है, सड़क के बीचों बीच एक पत्थर पड़ा हुआ है। आप सोचते हैं कि मैं इस पत्थर से न टकराऊं, मैं अपनी साइकिल को इस पत्थर से बचाकर निकाल लूंगा, टकराने नहीं दूंगा। और आपके मन में जरा सा भी अगर संदेह पैदा होता है अपने इस काम के प्रति, परिणाम के प्रति, या यूं कह लीजिए कि जरा भी भय की भावना पैदा होती है, तो आप देखेंगे कि आपकी साइकिल उस पत्थर से जाकर टकरा ही जाएगी। तो ये उसमें बताया गया है, उस साइकोलॉजिकल स्टडी में, कि जिनसे हम डरते हैं वो हो ही जाती है। और इसीलिए फिर वो ये बात प्रूफ हो जाती है कि हम जो डर रहे थे वो सही में डर रहे थे। जबकि सही मायने में यह है कि अगर हम नहीं डर रहे होते तो वो घटना होती ही नहीं। मित्रों, यदि आप इजाजत दें तो इसके बारे में मैं एक बहुत अपने जीवन की एक बहुत खूबसूरत घटना की चर्चा आप लोगों से करना चाहूंगा। और अभी हनुमान चालीसा जीवन का महामंत्र शीर्षक से मैंने एक किताब पूरी की है। मुझे उम्मीद है कि दो महीने में वो किताब छपकर मार्केट में आ जाएगी। वो बेसिकली हनुमान चालीसा के ऊपर लिखी गई किताब है। उसमें मैंने खासकर इस घटना की चर्चा की है क्योंकि इस घटना का भी संबंध कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा से है। तो आप लोगों से इजाजत लेकर के मैं इसकी चर्चा करना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि जो घटना मेरी है, जो भावनाएं मेरी हैं, जो भय मेरा है, जो उपाय मेरे हैं, मैं समझता हूं कि आप सबके भी लगभग होंगे। क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी भावनाएं होती हैं, हमारी बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं, यहां तक कि विचार भी होते हैं, जो होते तो हमारे हैं लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं बहुत से लोगों के विचारों को। तो मैं अपने इस भावना को, इस विचार को, इस उपाय को एक तरह से इसी तरह का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मॉडल मानता हूं। मित्रों, क्या था कि जिस गांव में मैं रहता था तो हमारा जो घर था उसके एक साइड में, अगर उसके हम वेस्ट में जाएं तो थोड़ी सी चढ़ान पड़ती थी। सड़क मतलब मुख्य सड़क था और थोड़ी सी चढ़ान पड़ती थी, लगभग आधे किलोमीटर की चढ़ान होती थी और चढ़ान के बाद फिर से उतार शुरू हो जाती थी। तो जहां पर ये चढ़ान खत्म होती थी वहां पर एक पीपल का पेड़ था, काफी पुराना पीपल का पेड़ हो गया था। और मजेदार बात यह होती थी कि मुझे वो दृश्य अभी भी याद है कि चूंकि वो पीपल का पेड़ पश्चिम दिशा में था तो सूरज जब डूबता था तो हमेशा ये दृश्य बनता था कि वो जो डूबता हुआ सूरज है वो उस पीपल के पेड़ की शाखों के बीच में उलझ जाता था। तो ऐसा लगता था जैसे कि सूरज फंस गया हो और उससे निकलने की जद्दोजहद कर रहा हो। मैंने अभी आपसे कहा कि पीपल का पेड़ काफी पुराना हो गया था तो वो उसमें उतनी हरियाली नहीं रहती थी, उसकी शाखाएं फैली रहती थी, खाली शाखाएं, सूखी शाखाएं, कहीं कहीं थोड़े बहुत पत्ते भी होते थे। तो गांव वाले ये मानते थे कि इसमें भूत रहता है। ठीक है, मैं भी मानने लगा कि इसमें भूत रहता है। तो मित्रों, होता क्या था कि जब मुझे बाजार जाना होता था, बाजार करता था मैं, तो जब हम लोग बाजार करके लौटते थे तब अक्सर देर हो जाती थी। जो छत्तीसगढ़ के श्रोता होंगे वो जानते भी होंगे कि वहाँ बाजार जो है वो दोपहर के बाद, लंच के बाद लगभग तीन बजे शुरू होता है और फिर शाम अंधेरा होते होते वहाँ का बाजार खत्म हो जाता है। तो बट नेचुरली कि जब आप घर लौटेंगे तो अंधेरा होने लगेगा, रात होने लगेगी। तो मित्रों, जब मैं लौटता था तो लौटने के समय जैसे ही मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचता था या उससे पहुंचने से पहले ही, चूंकि दिमाग में ये बात रहती थी कि इसमें भूत रहता है, तब आपके पास क्या उपाय है? आप अवॉइड कर नहीं सकते, आपको बाजार जाना ही है क्योंकि आर्थिक स्थिति का सवाल है। तो मैंने इसी केवल इसी बचाव के उपाय के रूप में पूरा हनुमान चालीसा रट लिया। मुझे बहुत कम उम्र में पूरी हनुमान चालीसा याद हो गई थी और मैं समझता हूं आप में से भी बहुतों को याद होगी हनुमान चालीसा। और होता यह था कि जैसे ही मैं पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचता था, मतलब मेरी सेटिंग हो गई थी, मैं एक पर्टिकुलर, पहले से ही पर्टिकुलर पॉइंट से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता था और उसकी सेटिंग कुछ ऐसी हो गई थी कि जैसे ही मैं पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता था तो वो पंक्तियां मैं मेरे कंटिन्यूएशन में आ जाती थी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और मित्रों मैं सुरक्षित फिर घर अपने पहुंच जाता था। तो बिल्कुल मुझे लगा कि हनुमान जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, नो डाउट। तो मेरी आस्था और ज्यादा हनुमान चालीसा पर बढ़ी और आस्था आज भी है, लेकिन अर्थ उसके बदल गए हैं। अब हुआ क्या दोस्तों कि मेरे साथ ही मेरे चाचा भी थे, अभी भी हैं, हम लोग हम उम्र थे, वो मेरे से लगभग लगभग 1.5 साल बड़े हैं, वो भी बाजार जाते थे, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते थे कि यहां कोई भूत ऊत रहता है, वो नहीं मानते थे। वो बड़े हिम्मती थे, साहसी किस्म के थे, तो वो नहीं मानते थे। और मुझे डर लगता था कि मेरे चाचा की गर्दन को कभी न कभी ये भूत पकड़ करके दबाएगा, क्योंकि ये मान नहीं रहे जबकि भूत होता है। गांव वालों से पूछिए कि भैया तुमने कभी देखा है, तो कहते कि नहीं हमने नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग कह भी देते थे कि हाँ काला काला दिखाई दिया था, हाँ सफेद सफेद दिखाई दिया था, भगवान जाने दिखाई दिया था या नहीं दिया दिखाई दिया था। मैं तो कन्फर्म करने के लिए पूछता था कि हे भगवान कोई कह दे मुझे कि यहाँ भूत ऊत कुछ नहीं है, ताकि मैं कम से कम इस भय से जो सप्ताह में 2-3 दिन मुझे परेशान करता, मैं इस भय से मुक्त हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मित्रों, मेरे चाचा नहीं मानते थे कि भूत ऊत कुछ होता है, तो वो हनुमान चालीसा उन्होंने याद भी नहीं की, तो इसलिए पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। तो मित्रों, हम दोनों साथ साथ लौटते थे और भूत ने मुझे कभी नहीं पकड़ा, मेरे हनुमान चालीसा से डर गया होगा, लेकिन मेरे चाचा को भी कभी नहीं पकड़ा, वो किससे डर गया? तो अब ये केवल आपके सोचने की बात है। हम दोनों ही सुरक्षित पहुंचे, पहुंचते ही थे, और जितनी बार हमने वहां से हम गुजरे, हर बार हम सुरक्षित पहुंचे। मैं भी पहुंचा जो भूत से डर रहा था, मेरे चाचा भी पहुंचे जो भूत से नहीं डर रहे थे, वो मानते ही नहीं थे। अब सवाल ये है मित्रों, अब एक प्रश्न अगर हम लॉजिकली सोचें, और यही मैं इस ऑडियो गाइडेंस में करता हूं कि पहली बात तो ये कि भूत होता है या नहीं होता है, या वहां था या नहीं था, पहला तो इसका उत्तर ढूंढिए। और दूसरा है कि अगर वो था वहां तो उसने मुझको नुकसान नहीं पहुंचाया, इसका एक कारण आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था तो हनुमान जी ने मेरी रक्षा की। तो लेकिन यदि वो था तो फिर उसने मेरे चाचा को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? वो किस चीज से डर गया? क्या मेरे चाचा के साहस से डर गया? और अगर वो साहस से डर गया तो इसका मतलब है कि भूत का इलाज साहस है, अब मुझको भी डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या सच में भूत इतना कमजोर होता है? और अगर कमजोर नहीं होता है तो मेरे चाचा को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि इससे तो ये होगा कि मेरे चाचा नहीं डर रहे हैं तो वो दूसरे लोग नहीं डरेंगे, तीसरे लोग नहीं डरेंगे, पूरा गांव नहीं डरेगा, तो पता लगा कि भूत का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो भूत अपने अस्तित्व को क्यों खत्म होने देना चाहेगा? तो मित्र, इस तरह से इस छोटी सी घटना में आपको ढेर सारे सवाल खड़े कर सकता है, और इन ढेर सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश में जीवन का महामंत्र हनुमान चालीसा में मैंने की है। तो मित्रों, पहला जवाब कि क्या भूत था? यस, भूत था। क्या भूत नहीं था? यस, भूत नहीं था। अब कहेंगे ये क्या उटपटांग की बात हो गई? मित्रों, ये उटपटांग की बात नहीं है। जी हां, चूंकि मैं बिलीव करता था कि भूत था, तो मेरे लिए भूत था वो मेरे अंदर था। चूंकि मेरे चाचा बिलीव ही नहीं करते थे भूत पर, तो उनके लिए भूत नहीं था। यानी कि अगर मैं विश्वास कर रहा हूं तो वो है, और अगर दूसरा कोई विश्वास नहीं कर रहा है तो वो नहीं है। दूसरा उत्तर मित्रों कि फिर वो भूत था तो कहां था, इसका उत्तर मैंने दिया है कि वो भूत पीपल के पेड़ के नीचे नहीं था, वो भूत मेरे अपने अंदर था। और अगर मुझे विश्वास है तो वो भूत हर जगह है, पीपल के पेड़ पर भी है, तुलसी के पौधे पर भी है, बरगद के पेड़ पर भी है, नीम पर भी है, हर जगह है। वो खंडहर में है, घर के छप्पर में है, गांव के कूड़े में, कूड़े के ढेर में है, नालियों में है, जहां भी सोच लीजिए, जो भी आपको थोड़ी सी गुप्त जगह लगे, जो भी थोड़ी सी रहस्यमय जगह लगे, जो भी थोड़ी सी अंधेरे वाली जगह लगे, मान लीजिए कि वहां भूत बैठा हुआ है, क्योंकि अब मैच कर जाता है ना, अंधेरे रंग से भूत का रंग मैच कर जाता है। तो मित्रों सीधी सी बात है कि भूत है, भूत था, वो है हमारे अंदर। जिस दिन हम इस भय से अपने आप को मुक्त कर लेंगे, वो जो भूत है वो हमें मुक्त कर देगा। मित्रों अभी अंधेरे की बात आई, एक चीज और मैं आपको यहीं, चूंकि अंधेरे की बात आई है तो शेयर करना चाहूंगा कि दिन में भी मैं कई बार आता जाता था, लेकिन दिन में मुझे कभी डर नहीं लगता था। मुझे लगता था कि दिन में तो भूत मेरा कुछ कर ही नहीं सकता है। तो मैंने इस पर जब विश्लेषण किया आगे चल करके, उस समय यह विश्लेषण मैं नहीं कर पाया था मित्रों, आगे चल करके जब मैंने बहुत साल बाद, तो मुझे लगा कि सही मायने में अंधेरे में हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि अंधेरे में हमारा ज्ञान खो जाता है, अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, तो भूत आ सकता है, कभी कहीं से भी अटैक कर देगा। अरे भैया दिन में भी अगर वो मेरे ऊपर अटैक कर देता तो क्या 13-14 साल के लड़के में इतना दम है कि वो उस भूत का मुकाबला कर पाता? उसको अटैक करना होता तो दिन में भी कर देता, रात में अकेले ही पकड़ के मुझे डर के दबोचेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह थी कि अंधेरा हमारी अज्ञानता का प्रतीक है, प्रकाश तो ज्ञान का प्रतीक है आप जानते हैं, तो अंधेरा हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। तो जहां अज्ञानता होगी वहां भय होगा ही होगा। इसीलिए आप देखिए कि जब आप सफर करते हैं गांव में खासकर, या सड़कों पर भी जब आप चलते हैं, रात हो गई है, धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा है, तो अगर कोई खंडहर वाली जगह आपको दिखाई देगी, पुराना मकान उजाड़ सा दिखाई देगा, बंद दिखाई देगा, जहां कोई नहीं रह रहा है, तो आपको वहां ज्यादा डर लगने लगेगा, क्योंकि आपको लगता है कि यहां भूत हो सकता है, कोई नहीं रह रहा है तो यहां भूत हो सकता है। ऐसा नहीं है, सवाल केवल बात यह है कि चूंकि वहां रोशनी नहीं है, घर में रोशनी होनी चाहिए, वहां रोशनी नहीं है। अब रोशनी नहीं है तो आपको लगता है कि फिर यहां भूत होगा, यानी कि आपको वो घर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। जब अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको लगता है कि वहां भूत होगा। और अच्छे से दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वहां प्रकाश की कमी है। तो अगर आपको क्या नहीं लगता दोस्तों कि अगर हम अपने अंदर एक दिया जला लें, एक बल्ब जला लें, तो अंधेरा खत्म हो जाएगा? अंधेरे को खत्म करने का तरीका यह नहीं होता कि आप अंधेरे से भागें, वो तो आपके पीछे पीछे भागेगा, जहां जाएंगे वहां अंधेरा रहेगा। अंधेरे का तरीका यह भी नहीं हो सकता कि आप उसे मांज सके, उसे साबुन से धो सके, कोई ऐसा डिटर्जेंट पाउडर नहीं बना है। एक ही तरीका और बहुत सिंपल सा तरीका है, एक छोटा सा दिया जला लीजिए, अंधेरा का, बड़े से बड़े मकान का भी, बड़े से बड़े एरिया का भी अंधेरा गायब हो जाएगा। तो मित्रों एक बात जो मैं सिद्ध करना चाहता था इस उदाहरण से, वो सिर्फ ये जो मैंने कल बात कही थी कि मूलतः जो भय होता है वो हमारे अपने अंदर होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर वो है तो उससे मुक्त होने का उपाय क्या है? वो है ज्ञान। अज्ञानता भूत को जन्म देता है, या कह लीजिए कि अज्ञानता ही अपने आप में भूत है जो हमें सताता रहता है। तो मित्रों ये दीपक कैसे जलेगा, ये ज्ञान कैसे आएगा, रोशनी कैसे फैलेगी, इसके बारे में कल हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। अब मैं आता हूं सेकेंड स्टेज पर, जो AIR न्यूज का स्टेज है। दोस्तों कल के रेडियो समाचार आप लोगों ने सुने होंगे, कुछ खबरें हैं जो, एक तो कुछ खबरें तो ऐसी ही थी जो परसों की बातें रिपीट हुई थी, जिसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की है। कुछ खबरें ऐसी भी थी जो रिपीट तो नहीं हुई थी, लेकिन हम इससे पहले थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अच्छी बात है कि हम उसकी चर्चा आज फिर थोड़ी कर लेंगे। और सच पूछिए दोस्तों तो यही ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज होती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। विशेषता यह होती है कि उससे आपको पूरे एक जो घटना घट रही है या न्यूज पूरे के पूरे क्रम से मालूम होता चला जाता है कि उसका ओरिजिन कहां से हुआ, उसका जन्म कहां से हुआ था उस समाचार का, और फिर वो समाचार कैसे धीरे 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 विकसित होती चली गई है, और फिर कैसे उसका अंत हुआ है, उसका समापन कैसे हुआ है। तो पूरा का पूरा उस घटना चक्र के आप साक्षी बन जाते हैं, वो आपका पूरी तरह से आपकी आंखों के सामने गुजरता है, आपके दिमाग के सामने से वो पूरी की पूरी घटना गुजरती है, और यही तो होता है कि उस पूरी की पूरी घटना पर आपका कमांड हो जाता है। जैसे कल के ही न्यूज में न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात कही गई है, न्यायिक नियुक्ति आयोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो पहले कॉलेजियम सिस्टम था, अब उसकी जगह पर सरकार एक अलग से आयोग गठन करना चाह रही है, और जिसमें प्रधानमंत्री भी होंगे, जिसमें हमारे कानून मंत्री भी होंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे, और जिसमें दो अन्य सदस्य भी होंगे जो अपने अपने क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सदस्य होंगे, जिस तरह से भी वो उसका एक कमेटी बनाई गई है। इसको लेकर के सरकार ने एक संविधान संशोधन बिल पारित किया, और इसके बाद राज्यों ने भी उसे स्वीकृति दे दी, और स्वीकृति देने के बाद सरकार ने जब कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि दो सदस्यों की नियुक्ति किसमें की जानी है, तो आप आइए हम डिसाइड करते हैं, तो उन्होंने इस आधार पर करने के लिए, अध्यक्षता करने के लिए मना कर दिया इस बैठक की, क्योंकि इस जो सरकार ने जो संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है, जो शायद 121वां संविधान संशोधन विधेयक है, उसको लेकर के एक याचिका दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। मतलब मामला अब गड़बड़ हो गया है, राइट। इसको लेकर के हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब मित्रों देखें कि यहां तक जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, इन सब के बारे में आपको जानकारी है, कुछ भी मैं नई नहीं दे रहा हूं। तो आप ये मत समझिएगा कि फिर सर हमारा समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं मित्रों, तो मुझे लगता है कि आप सिविल सर्विस की सही तरीके से तैयारी करने से चूक रहे हैं। यही तो रिवीजन होता है जो आपको भूलने से रोकेगा, और केवल यही नहीं है, यही वो तरीका भी है जिससे आप एक घटना की गहराई में उतरते चले जाएंगे। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, उसकी छोटी छोटी और सारी चीजों पर सोचेंगे नहीं, तब तक आप उसकी गहराई में नहीं उतर पाएंगे। अब देखिए कि फिर कल न्यूज में वो बात क्यों आई, अब क्या नई चीज घटित हो गई। नई चीज घटित ये हुई मित्रों कि जो बेंच है, जो पांच सदस्यों की बेंच जो इसकी सुनवाई कर रही है, उसने सरकार से कहा था कि भाई जो कॉलेज, जो पहली प्रणाली, जो पहले की जो प्रणाली चल रही थी, उसमें क्या खामियां थी, क्या गड़बड़ी थी, आप बताइए। तो उसको लेकर के सरकार ने कल उस बेंच के सामने जो अपना तर्क रखा है, उसमें उन्होंने दो बातें कही हैं। खासकर एक बात जो न्यूज में थी वो ये थी कि सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि ये जो अभी बेंच है, ये पांच सदस्यों वाली है, तो इस बेंच को 11 सदस्यों वाली बनाई जाए। उसमें न्यूज में ये बात नहीं थी, लेकिन उसका कारण ये था कि इससे पहले जो कॉलेजियम प्रणाली जो बनाई गई थी, जिस बेंच ने इसके आदेश दिए थे, वो 9 सदस्यों वाली थी। तो उनका ये कहना कि चूंकि वो 9 जजों की पीठ ने वो फैसला दिया था कॉलेजियम स्थापना के लिए, जो सुनवाई की थी, मतलब कह लीजिए, वो तो बाद में तो फिर वो सभी संविधान से वो होता है, तो इसकी भी सुनवाई कम से कम उससे अधिक की तो हो, 11 की। इसके बारे में कोर्ट ने अभी आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया है, वो अभी सुनवाई करेगी, और जरूरी हुए तो हुआ तो उसको एक्सेप्ट करेगी, फिर वैसा करेगी। अब मित्रों देखिए कि अब क्या स्थिति आ रही है, तो आपको पूरा का पूरा डेवलपमेंट मालूम है, तो हम इसी क्रम में दो चीजें दोहरा लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट क्यों किया है, इस याचिका को एक्सेप्ट क्यों किया है। उसके दो रीजन हैं मित्रों, और ये दोनों रीजन आपके दिमाग में बहुत साफ तरीके से स्पष्ट होने चाहिए, मतलब उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर एक, हमारे संविधान ने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात कही है कि हमारी जो जुडिशरी होगी वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। अब ये बात अलग है कि नियम कानून बनाने के मामले में संसद सर्वोपरि है, राइट। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये हमारे संविधान की आत्मा है। अब ये जो नया आयोग जो बना है, इसमें जो एक सदस्य रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें एक कानून मंत्री है, प्रधानमंत्री है। अब उसमें दिक्कत ये हो रही है कि जो कानून मंत्री होंगे, ये कानून प्रधानमंत्री नहीं, जो कानून मंत्री होंगे, ये कानून मंत्री राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो अब लोगों को लग रहा है कि इस तरीके से कानून मंत्री के माध्यम से सरकार जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में या जुडिशरी के क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगी। तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है वो इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, तो ये गड़बड़ी हो सकती है। आगे क्या होगा सही में, वो होगा नहीं होगा, वो एक अलग बात है। वैसे इतिहास इस बात को बताता भी है कि सरकार ने जो हमारी जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंसी में हस्तक्षेप किया है, जिसके लिए लोग अक्सर श्रीमती इंदिरा गांधी जब हमारी प्रधानमंत्री थी तो जो आपातकाल का पीरियड था उसका उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा यह है मित्रों कि केशवानंद भारती मामले में ये बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब कोई भी जो भी संविधान में नया कानून बने या संविधान में संशोधन हो वह हमारे संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, और यदि वो मूल आत्मा के विरुद्ध हुआ तो उसे कोर्ट रिव्यू करके खारिज कर सकती है। तो अब मूल आत्मा क्या है? इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, और ये इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी पर चोट पहुंचा रही है। तो कुल मिलाकर के इसकी सुनवाई वो 5 सदस्यों वाली जो खंडपीठ है वो कर रही है। तो अब एक तरह से टकराव की स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है मित्रों। टकराव की स्थिति इस वक्तव्य से सरकार के थोड़ी सी और एक गंभीर रूप मैं समझता हूं कि ले चुकी है, जैसा कि दैनिक भास्कर ने लिखा है कि कल सरकार ने ये उस खंडपीठ के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इस प्रणाली को स्थापित नहीं किया गया तो फिर केंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर एक कानून लेकर के आएगी और उसको रिस्टैब्लिश करेगी। तो उसने एक तरीके से सीधे सीधे अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। कोर्ट अब इस पर क्या स्टैंड लेता है, क्या फैसला देता है, ये हम देखेंगे। तो मित्रों एक दैनिक भास्कर की का जो एडिटोरियल कमेंट है वो मैं आज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इसे आप देखिएगा और देखते हैं कि हम आगे क्या होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिविल सर्विस के लिए टॉपिक मैं समझता हूं कि तैयार हो रहा है। मित्रों जो दूसरी बात थी वो थी, जो दूसरी खबर थी वो प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर के खबर थी। मैंने थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से की है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कल 14 तारीख से विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें वो 3 देशों की यात्रा करेंगे, वह चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया। ये हमारे न्यूज में थी, और न्यूज में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई वो ये कि चीन, आपको मालूम है कि आर्थिक कॉरिडोर बनाने में लगा हुआ, हम सिल्क रूट की बात करते हैं, मैरीटाइम सिल्क में समुद्र पारी सिल्क रूट की बात करते हैं ना, कई बार इन सब चीजों पर हम चर्चा कर चुके हैं। और खासकर जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए थे तब तो हम लोगों ने बहुत विस्तार से इस पर बात की भी थी, और जो स्टूडेंट रहे हैं अक्टूबर फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के, उनको मालूम है कि मैंने एक स्पेशल ऑडियो उनको 2 पार्ट में प्रोवाइड किया था, खासकर भारत पाकिस्तान और भारत अमेरिका और चीन, इन 3 देशों के आपसी रिश्तों के बीच में भारत कैसे संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब यूं कह लीजिए कि भारत पाकिस्तान, भारत अमेरिका और चीन के बीच में कैसे संतुलन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, उसके लिए क्या क्या कर रहा है, उसमें हमने ये सिल्क रूट और इन सब की बहुत विस्तार से चर्चा की थी। न्यूज में ये बात कही गई कि एक जो रूट बन रहा है, जो आर्थिक कॉरिडोर बन रहा है, वो पाकिस्तान से चीन का जो बन रहा है, जो कश्मीर से होकर के गुजरता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो वहां से होकर के गुजरता है। तो भारत ने इसके प्रति अपनी एक कंसर्न, अपनी चिंता जाहिर की है। पहले से ये न्यूज में इसलिए दे दिया गया है मित्रों कि चीन, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे और बातचीत होगी तो चीन इसके बारे में अपना मंतव्य स्थापित कर ले और ये मान करके चले कि भारत के लिए ये चिंता का विषय है, तो उसे कोई ना कोई इसका हल ढूंढना चाहिए। ये न्यूज थे मित्रों। अब इसी के साथ ही हम थोड़ी सी चीजें अगर शेयर करना चाहें तो वो कर सकते हैं कि हम भारत और चीन के बीच में कौन कौन सी समस्याएं हैं। कर्टेन रेजर के तौर पर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है उसमें सीमा विवाद चल रहा है, हिंद महासागर में जो चीन अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, भारत उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, भारत अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाह रहा है, जिसमें 2013 को एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को लेकर के क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये एक विवादास्पद मुद्दा है। इसी तरह से चीन चाह रहा है कि भारत दक्षिण जो चीन सागर है उसमें अपना प्रभुत्व न बढ़ाए, और आपको मालूम है कि हमारे राष्ट्रपति कुछ महीने पहले, लगभग 6-7 महीने पहले जब वियतनाम यात्रा पर गए थे तो भारत ने वियतनाम में तेल के और कुएं खोदने के ठेके लिए, जिसका चीन ने विरोध किया था। तो चीन चाहता है कि दक्षिण चीन सागर में से अपनी उपस्थिति भारत खत्म कर दे। जहां तक व्यापार का मामला भी चीन के बहुत ही ज्यादा फेवर में है, तो भारत डेफिनेटली चाहेगा कि भारत, चीन जो है कुछ मामलों में भारत को तरजीह दे, खासकर दवाइयों के मामले में वो अपने मार्केट को ओपन करे, निवेश भारत चाहेगा चीन से ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि चीन के पास दोस्तों अभी दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अभी चीन के पास है, और चीन खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के मामले में अभी वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है। आपको बंदरगाह बनवाने हो, आपको विशेष आर्थिक क्षेत्र बनवाने हो, सड़कें बनवानी हो, रेल लाइन बनवानी हो, तो अभी चीन सबसे बेस्ट माना जाता है। तो भारत चाहेगा कि वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिन पर अभी हमारे प्रधानमंत्री और चीन के बीच बातचीत होगी, देखते हैं क्या निकल करके आएगा। ये मैंने आपकी थोड़ी बैकग्राउंड की थोड़ी सी चर्चा इसलिए कर दी है ताकि अब जो घटनाएं होंगी, जो न्यूज आप सुनेंगे, उनको बहुत अच्छे से आप समझ सकें। मित्रों, एक बहुत दुर्भाग्यजनक खबर वही है कि नेपाल में फिर भूकंप आया है। भूकंप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, अभी सिविल सर्विस के जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उसमें पूछे भी जा रहे हैं भूकंप पर प्रश्न। मुझे लगता है कि 2015 का जो जीएस मेंस होगा उसमें हो सकता है कि फिर से पूछा जाए। शेयर मार्केट को लेकर के मित्रों खबर थी कि शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा है, और उसके रीजन में यही दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री के साल भर का टर्म पूरा हो गया है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में जितनी तेजी से रिफॉर्म की हम उम्मीद कर रहे थे कि सुधार हो जाएंगे, वो सुधार नहीं हुए। और सुधार कौन कौन से हैं आपको मालूम है, लेबर लॉ उसमें सुधार हो, पुराने जो कानून हैं वो खत्म किए जाएं, जो उद्योग लगाने के लिए जो बहुत सारे कानून बने हुए हैं, जो जटिलताएं हैं उनको खत्म की जाए, तो इस तरह के कुछ रिफॉर्म की हम उम्मीद कर रहे थे जो रिफॉर्म नहीं हो सके हैं। तो दोस्तों केवल न्यूज में केवल इतनी थी, खासकर जीएसटी बिल को लेकर के और भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के वो जो दो खबरें आपने पढ़ी होंगी वो पिछली ही खबरों का एक्सटेंशन था, उनको रिपीट किया गया था कि जीएसटी बिल को राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया गया और भूमि अधिग्रहण बिल को दोनों सदनों के राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया है। उसमें एक जरूर नया एडिशन था कि ये जो संयुक्त संसदीय समिति होगी इस 30 सदस्यों वाली होगी, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। और जो प्रवर समिति को सौंपा गया है, जो जीएसटी बिल राज्यसभा की प्रवर समिति को, उससे कहा गया है कि संसद का जो मानसून सत्र शुरू होगा तो उसके पहले सप्ताह में ही वो अपनी रिपोर्ट दे दे, क्योंकि सरकार चाहेगी कि जीएसटी बिल को वो 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में लागू कर सके। तो मित्रों AIR न्यूज के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं अखबारों की क्लिपिंग्स पर। अखबारों की क्लिपिंग्स में मित्रों आज ज्यादा क्लिपिंग्स नहीं है, टोटल 5 क्लिपिंग्स हैं। दैनिक भास्कर के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, एक क्लिपिंग इंडियन एक्सप्रेस की है जिसमें खासकर अभी केंद्र सरकार ने 3 जो बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो लागू की हैं, खासकर वेलफेयर स्कीम को लेकर के जो पेंशन योजना है और जो 2 बीमा योजना, इसको लेकर के इन्होंने थोड़ी सी बातें की हैं। इस पर हम लोग चूंकि कल चर्चा कर चुके हैं, परसों भी इस पर हमने चर्चा की थी, हिंदी में भी काफी क्लिपिंग्स आपको उपलब्ध कराई गई हैं, इसीलिए इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। मित्रों इकोनॉमिक टाइम्स का एक छोटा सा एडिटोरियल कमेंट है जो खासकर जो ई कॉमर्स है उसको लेकर के, आप देख रहे हैं कि ई कॉमर्स पिछले 1 साल से लगातार बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है। इसमें इन्होंने ये बात कही है कि ई कॉमर्स भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सरकार को चाहिए कि अब इसके फेवर में वो पॉलिसी लेकर के आए, और सबसे बड़ी हमें पॉलिसी ये चाहिए कि सरकार इस सेक्टर में भी अब FDI को अलाउ करे, क्योंकि FDI मल्टी ब्रांड कॉमर्स में अभी बैन है। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद 2 छोटे छोटे और एडिटोरियल कमेंट है मित्रों, आप देख लीजिएगा, ये नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों अब मैं अंतिम चरण पर आता हूं जो ईमेल का चरण है। पहली बात तो ये दोस्तों कि लगातार कुछ स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे जो लेक्चर्स हैं, जो सैटरडे ऑडियो गाइडेंस है और जो दूसरी चीज़ें हैं पूरी, क्या अंग्रेजी में प्रोवाइड नहीं की जा सकती, उन्हें अंग्रेजी में प्रोवाइड किया जाए। तो मित्रों मैं बहुत स्पष्ट रूप से अपनी इस कमी को स्वीकार करता हूं कि अंग्रेजी में उतने फ्लुएंटली और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कर पाना कम से कम मेरी क्षमता के बाहर की बात है, इसीलिए मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। मैं आप लोगों की जरूरत को समझता हूं और उसे पूरा सम्मान भी देता हूं, लेकिन मित्रों इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जिन्होंने फीडबैक के रूप में मेल भेजे हैं, और इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं, बी हर्षवर्धन रेड्डी हैदराबाद से, दिलीप मिश्रा मऊ उत्तर प्रदेश से, तनुप्रिया सिंह दिल्ली से, अजय तोमर बागपत से, भरत बालियान चेन्नई से, अभिजीत पाटिल महाराष्ट्र से, नीरज कुमार औरंगाबाद से और जगमोहन चौधरी, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों इसी के साथ ही अब मैं अपने इस डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। हमेशा की तरह कल हम लोग फिर बातचीत करेंगे, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।